ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 13ویں بارے کا آغاز کریں گے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 53 سے 53. وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. میں اپنے نفس کی کچھ برات ظاہر نہیں کرتا کیونکہ نفس تو بدی پر ہی اکساتا ہے، ہاں مگر یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. اس قول سے پارے کا آغاز ہے، جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے. وہ جب کہتے ہیں کہ اس کا قول ہے تو بات بنتی نہیں، لیکن وہ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی، اور حقیقت ہے کہ توبہ جو ہے انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. دوسری طرف کے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ جب ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور دوسری طرف کے لوگوں نے اپنا گناہ مان لیا، اقرار جرم بھی کر لیا، لیکن مروت کا خیال رکھتے ہوئے اور عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے یوسف نے کہا ہاں ہاں ہو سکتا ہے اس میں میرا بھی کوئی قصور ہو. لیکن دونوں کی بات کو ایک طرف کر کے ہم ادھر وما اوبر ریو کے نیچے اپنا نام لکھ لیں، یہ میرا قول ہے، یہ میں کہہ رہی ہوں. ہر ایک یہی سوچے، یہ میں کہتا ہوں کہ میرا نفس ہمیشہ مجھے برائی ہی پر مائل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اوپر شیطان اس طرح سے مسلط کیا گیا ہے کہ وہ اس کے جسم میں خون کے اندر دوڑتا ہے، اور خون کے اندر سے دوڑتے ہوئے جب وہ دل میں سے گزرتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے. لہٰذا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جب ہوتی ہے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب انسان کو وہ غافل پاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اسی طرح نفس کی تین اقسام ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. فطری طور پر نفس جو ہے نا وہ نفس امارہ ہے. آج اس کو سمجھ ہی لے. آپ دو انسانوں کو ذہن میں لائیں، ایک ہے جو پہلے اکھڑ تھا اور بہت ہی زیادہ برے ماحول میں اس نے پرورش پائی، سمجھ لیں کہ کسی جگہ گنوار، نہ دنیا کا پڑے ہوئے نہ دین کا پڑے ہوئے، کوئی ایک ایسا بچہ، بات بات پہ گالی اور اسی طرح کی جو بری چیزیں ہیں. اب اس بچے کی اصلاح مقصود تھی، اس کے ماں باپ کو بھی سمجھ نہیں تھی، لیکن کسی ساتھی نے کہا کہ اس بچے کو ٹھیک کرنا ہے. اب ادھر بچے کی بجائے کوئی بگڑی ہوئی چیز لے لے، یہ کمرہ اتنا میسی ہو، اتنا میسی ہو کہ کہیں کھانا، کہیں کچھ، کہیں کچھ، بگاڑ کی انتہا، اور اس انتہا سے اب آپ نے اس کو صاف کرنا ہے. اس کے راستے کے جو تین فیز ہیں نا، یہی ہم میں سے ہر ایک کے نفس کے فیز ہیں. آدم اور ابلیس کے قصے کو ہم شروع سے سمجھ چکے، کس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ابلیس کو ساری مخلوقات کے ساتھ ساتھ، تو ابلیس اس وقت اڑ گیا اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کہا کہ تو آج سے مردود ہے، اور انسان کو اسی وقت بتا دیا کہ دیکھو انہ لکم عدو مبین، یہ کھلا دشمن ہے. اس دن ابلیس کے اوپر جو کام ڈالا گیا، جو ذمہ داری ڈالی گئی، آپ یہ کہہ لیجئے وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے تیار ہوتا ہے. بچہ جو ہی دنیا میں آتا ہے ماں کے پاس وہ بیٹھ جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی پسلی میں یہ انگلی چبھوتا ہے، جس کے اثر سے بچہ روتا ہے. فطرت لے کر آیا بچہ، اللہ نے شروع کے 2 سال تک بچے کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اگر بچے فطری ماحول پہ پیدا ہوں، دودھ بھی پیتے ہوں ماں کا، اور 2 سال تک ان کی معصومیت باقی رہے، تو اس وقت تک شیطان کا اثر نہیں ہوتا، بچہ اسی فطرت پہ رہتا ہے. جو ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے نا، تو شیطان اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیتا ہے. اور یہ جو چھوٹے بچے کبھی خواب میں ڈر جاتے ہیں، کبھی رونے لگتے ہیں، کبھی بے وجہ روتے ہیں، اور کبھی آپ نے دیکھا ماں نماز کے لیے کھڑی ہوگی تو بچہ روئے گا. عام طور پہ کبھی نہیں بچے روتے، آپ میں سے کتنوں کا یہ ایکسپیرینس ہے، ادھر نماز کے لیے کھڑے ہوں بچہ روئے گا. آپ دیکھیں ایک اور چیز بچوں کی، دیکھیں کہ جو ہی ہم نماز پڑھیں گے نا، وہ بچے جو ادھر ادھر کھیل رہے ہیں نا، وہ سارے آ کے ہمارے آگے سے گزریں گے. یہ کس کی خرمستی ہیں؟ یہ شیطان کی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچوں کو پروٹیکٹ رکھا ہوتا ہے. اس کے بعد بچے کا ماحول ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ کتنا بگڑے. جو مثال دی کہ انتہا سے زیادہ وہ بچہ بگڑ جائے، تو وہ نفس جو وجود پائے گا وہ ہے نفس امارہ، برائی کا کام کرو. یہ اکثر ماں باپ کے آگے جو بچے بولتے ہیں نا جوانی کے ساتھ ساتھ، یہ نفس امارہ کی خرمستی ہیں. छोटे बच्चे रोते हैं, जिदे करते हैं, फिर उसमें माँ बाप का भी हाथ पड़ता है। बच्चों को तस्वीर वाले कपड़े पहनाए, म्यूजिक वाले खिलौने ले दिए, आप सोचिए कि उनके अंदर शैतान ज्यादा आएगा, शैतान को ये अच्छा नहीं लगता। आप बच्चियों को ऐसे कपड़े पहनाएं कि जिसमें ठीक है वो बच्चियां हैं लेकिन उनके बाजू भी खुले, उनके गले भी खुले, और स्ट्रिप्स वाली कपड़े, और उनको यानी आप टाइट्स पहना देंगे, शैतान उस बच्चे के साथ ज़्यादा खुश होगा। वो पूरी नज़र में रखता है, वल्लाही एक एक बच्चा शैतान की नज़र में। सूरत आगे आने वाली है बनी इसराइल, उसमें फिर इस पर बात कर लेंगे। इसने कहा था, अल्लाह मैं आदम की नस्लों को कच्चा खा जाऊंगा, इनको घुट्टी दूंगा, इंतज़ार नहीं करूंगा ये बड़े हों, बड़े नेक पवित्र, और फिर मैं इनको बहकाऊँ कि भाई तुम जवान हुए आओ देखो दुनिया। पहले दिन से उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती हैं। होते होते फिर इंसान नफ्से हमारा बनता है, हर बात में बुरे हूँ। सुबह बच्चे को सोता उठाए, हूँ मैं क्यों उठूँ, नमाज पे जाओ, हूँ मैं क्यों उठूँ। और आप फील करेंगे बच्चे जितने छोटे होते हैं वो आपकी बात ज़्यादा मानते हैं, जब वो बड़े होते हैं ना तो बात कम मानते हैं। वजह क्या है कि उनका शैतान, उनका नफ्स भी मोटा हो रहा होता है। और फिर हदीस में आता है कि नफ्स तो सरकश घोड़े की तरह, इसको तकवा की लगाम पहननी पड़ेगी। जो माँ बाप तरबियत में ही खूबसूरत रंग इख्तियार करते हैं उनके नफ्स जो होते हैं मुतमईन होते हैं, उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अब एक बिगड़ा हुआ बच्चा, फिर उसके बाद कुरान की रहनुमाई, किसी उस्ताद की रहनुमाई, कुछ फितरत की भी, कुछ अकल की भी रहनुमाई है, वो बुराई करता है तो उसके बाद उसके अंदर एक शऊर पैदा होता है, और वो शऊर क्या है, नफ्स लवामा, मलामत आती है, ये क्या किया। माँ से लड़के जाएगा बच्चा, कमरे में जाके खट से दरवाज़ा बंद किया, अंदर बैठेगा, साथ ये दूसरा नफ्स जागेगा, शर्म नहीं आती, ऐसे करके आए हो, जाओ उठो माफ़ी मांगो, तो वो कहेगा हाँ वो भी तो ऐसी करती हैं, वो भी तो चीखती रहती हैं, उनको भी तो मेरे जज्बात का ख्याल नहीं। ये अब अंदर जंग शुरू हो गई होती है लफ्ज़ लवामा की। जितना बाहर का माहौल मुवाफिक होता है ना, यानी माएँ कम बोलती हैं, माओं की दोस्ती होती है, या इसी तरह जो भी माहौल है इर्द गिर्द का, उतना नफ्स लवामा फिर स्ट्रॉन्ग होने लगता है। और अक्लमंदी यही है कि बच्चे बड़े ना हों जिस्म से, बल्कि उनका शौर भी बड़ा हो। इसीलिए आप पढ़ चुके हैं सूरत निसा में कि यतीमों को उनके माल कब दो, जब वो बलूगत को पहुंच जाए। एक जिस्मानी बलूगत होती है, वो सबको पता है 10-12 साल के एक बीच में आ जाती है, और एक है रूहानी बलूगत, जहनी बलूगत, वो कब आती है, जब बाहर का माहौल साजगार होता है। कई 20-25 साल के भी होके भी कोई नहीं बालिग बनते, बस बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग नहीं बनते। तो बहरहाल किस्म उत्सरी के नफ्स लवामा भी टोकता है, कुछ को गुनाह करने के बाद टोकता है, लेकिन बेहतरीन नफ्स लवामा वो है जो गुनाह करने से पहले टोके। जब इंसान अल्लाह की किताब से रहनुमाई पाता है ना, किसी उम्र में भी उसको अल्लाह की किताब मिल गई या उसको शऊर मिल गया, कभी हरम में चला गया, कभी उमरा किया, कभी कोई ऐसी नेकी की, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर उसका नफ्स लवामा स्ट्रांग होता जाता है, और दिन ब दिन नफ्स हमारा वीक होता जाता है। यानी ये जितनी मैं लफ्ज़ हदीस के बोलती हूँ ना, मैं खुलासा बोलती हूँ इस वक्त, मैं कोई टेक्स्ट नहीं नोट कर रही, ना हमारा ये इस वक्त स्टाइल है, लेकिन बात समझाने के लिए सिर्फ बताती हूँ कि हर इंसान के साथ एक फरिश्ता और एक शैतान है। ये हदीस आपने सुनी हुई है ना, तफसीर के सेशन में भी बहुत दफ़ा सुनाई है। अब यहाँ सिर्फ बात समझाने को बताऊँगी कि फरिश्ता क्या है, नफ्स लवामा, और शैतान क्या है, नफ्स अम्मारा। ये दोनों की लड़ाई होती है। बंदा जो काम ज़्यादा करता है ना, वो उसकी वो हिस, उसका वो नफ्स स्ट्रांग हो जाता है। नफ्स लवामा ज़्यादा स्ट्रांग कब होगा, जब ये उस हर बात में उसकी बात मानेगा, फिर उसकी दोस्ती हो जाएगी। और जो फिर भी कहता हूँ सब करते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि जो बच्चे वेस्टर्न माहौल में पलते हैं वो अमूमन बिगड़ जाते हैं। एक मारूफ जुमला है ना कि जी बच्चे कच्चे जहन थे, इधर आए फिर ना किसी ने बताया, वो बिगड़ गए। इस वक्त वो बिल्कुल इस तरह शिकंजे में, मैं कहती हूँ ऐसे लोगों पर रहम करें, ऐसे लोगों से नफरत नहीं करना, ना ऐसे लोगों को आपने को बुरा भला कहना, बददुआएं नहीं देनी, बस उनकी उस ग्रिप को दूर करें। नफ्स का चिमटना ऐसे जैसे जिन चिमट जाते हैं। अब अगर आप किसी को जिन चिपटे हुए देखें तो क्या आप उसको मारेंगे? नहीं, आप दुआ करें, जिक्र के हल्के, औज़ुबिल्लाह पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, आयतुल कुर्सी विर्द करें, उस बंदे का तसव्वुर करके उसके साथ किसी भी तरह से ऐसी बात करें, उस बच्चे को, उस शौहर को, उस बीवी को, उस माँ को, कोई भी हो सकता है, कि आहिस्ता आहिस्ता वो रिलैक्स हो। आप फील करें, हर बंदे के अंदर एक बच्चा होता है, वो किसी न किसी वक्त पे ज़रूर रियलाइज़ करता है। जब ये जंग शुरू रहती है ना, तो दिन ब दिन नफ्स लवामा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। कभी आपकी शौहर से झगड़ा हो, शौहर भी बोले, आप भी बोले, जो ही दोनों अलग अलग जगह होके बैठ जाते हैं तो फ़ौरन आपको मलामत नहीं होती कि गलती मेरी भी थी, ठीक है शुरू बात उन्होंने की, मैं चुप कर जाती, चलो भाई अगर वो नहीं इतना बोलते तो मैं क्यों बोली कि मैंने उनको गुस्सा दिलाया। ये नफ्स लवामा के खेल होते हैं। जब बंदे का नफ्स लवामा इस दर्जे पे पहुंच जाए कि गुनाह करने से पहले रोक ले उसको, تو پھر ایک تیسرا نفس پیدا ہوتا ہے جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یہ ہے مراد, یہ ہے مقصود. انبیاء کرام اس درجے پہ بعد درجہ اتم پہنچ جاتے تھے. آج بھی ہر وہ بندہ اس درجے کو پا سکتا ہے اللہ کے حکم سے جس نے نفس امارہ کو دبا دیا. ایسا بندہ کسی نیکی کی بات کو سن کے ایک دم ایکسپلائٹ نہیں ہو جاتا اور اس ایک دم ٹھنڈا نہیں پڑ جاتا, اور گناہ کی ٹیمپٹیشن سن کے ایک دم اس کا دل نہیں کرتا کہ میں کر لوں, اس کو مزہ نہیں آتا. اللہ کے نبی نے ایک دو بار کوشش بھی کی کہ میں تھوڑا سا دیکھوں یہ لوگ کیا کرتے ہیں شادیوں میں, راگ رنگ کی محفلوں میں. دو دفعہ سے زیادہ کا واقعہ ہے غالباً, مجھے دو یاد ہیں, دو سے تین بھی ہو سکتے ہیں, کہ اللہ نے سلا دیا آپ کو. یہ آپ کی نبوت سے پہلے کی باتیں تھیں. اس کو عصمت انبیاء کہتے ہیں. اللہ انبیاء کرام کو گناہ چکھنے بھی نہیں دیتا. اسی طرح اگر آپ کے بچے اپنی جوانیوں میں اس درجے پہ پہنچ گئے نا, تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس برے ماحول میں بھی برے نہیں ہیں. وہ کیچڑ میں کھلا ہوا پھول ہے, چاروں طرف گندگی ہے, لیکن ان کو گندگی نہیں لگی. لیکن اس کے لیے بہت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے. تو فطرت کے اعتبار سے نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے. ہم سب کو بھول جائیں, اب بچوں کو بھی بھول جائیں, شوہروں کو بھی بھول جائیں, دس اینڈ دیٹ, سب کو بھول کے صرف اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ الا ما رحم ربی میں میں آتی ہوں. ہم سب الحمدللہ, سب کو پتہ کہ یہ خلاصہ قرآن کب ہو رہا ہے, جب ہم قرآن کے سیشن سے پورا کر چکے. ہم اپنی بات کریں, مت دوسروں کو دیکھیں. بعض دفعہ ہم کچھ نیکیاں بہت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل ہم سے نہیں چھٹتی. اور بعض ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہو سکتے ہیں, بعض ہمارے بول ایسے ہو سکتے ہیں جو ہماری ساری نیکیوں پہ پانی ڈال دیں گے. اگر آپ انسان کو ڈسکور کریں نا, اس کے اندر بہت کچھ ہے. میں تو اکثر بیٹھ کے سوچتی ہوں, اللہ تو کیسے حساب کرے گا. ایک بندہ ایک طرف اس کو دیکھے تو ایسے لگتا ہے کہ مٹی, اتنا گھلا ہوا, اتنا عزیز, اتنا مزا, لیکن دوسری طرف دیکھے نماز بھی نہیں پڑھتا. ایک طرف حقوق العباد اتنے اتنے, اور دوسری طرف اللہ کو مانتے ہی نہیں. یہ وہ ذات ہے مالک یوم الدین جو حساب کرے گی, لیکن ہم نے اپنا حساب کرنا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ میرے پہ رحم کر دے. اور ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آگے چلتی ہوں, اور وہ کیا کہ جب انسان قرآن سے گزر جاتا ہے نا, تو اس کو دوسروں کی بولی نہیں بولنی چاہیے جو دوسرے بولتے ہیں, جو دوسرے کرتے ہیں. اور حدیث میں ایک مثال ملتی ہے نفس کے لیے, کہ نفس ایک گھوڑا, اگر ہم اس کو غالب نہیں کریں گے نا, اس کے اوپر ہم نہیں بیٹھیں گے, تو یہ ہمیں لتاڑ کے اوپر کھڑا ہو جائے گا. تو یہ نفس کو لتاڑنے کا کورس ہے. یہ قرآن بندے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. میں کہتی ہوں ملیا میٹ کچومر میش ہو جاتا ہے انسان اس قرآن کو پڑھنے کے بعد. پھر روتا ہے, پھر تڑپتا ہے. وہ کیوں رو رو کے کہتے تھے کہ اللہ کو موقع دکھا, ہم تجھے کر کے دکھائیں گے. وہ کیوں کہتے تھے آج میں وہ عمل کروں گا کہ اللہ بھی آسمان پہ مسکرا اٹھے گا. انہوں نے اپنے نفسوں کو باندھا ہوا تھا. اور اس پہ بہت کچھ ہو سکتی ہے بات, لیکن ابھی نہیں. وقال الملک ائتنی بہ استخلصہ لنفسی, بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. یہ ہے انعام کتنے سال کے صبر کا. اس آیت پہ تو مجھے اتنا رونا آتا ہے کبھی کبھی, بہت. میں اکیلے میں سورہ یوسف کو کبھی سوچوں نا, تو میں سوچتی ہوں بس اپنے اندر خوبی پیدا کر لیں. واللہ ہی لوگ آپ کو کسی صدارت یا وزارت سے کیوں نہ آپ کو بلائیں, وہ آپ کو بلائیں گے. یاد رکھیے, مسلمان تھے حضرت یوسف, بادشاہ غیر مسلم تھا. آپ کہتے ہیں جی غیر مسلم کے ساتھ بہت ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, ان کو جابز نہیں ملتی, ان کو یہ نہیں ملتی. نہیں, یہ جملہ اس کو ہائی لائٹ کر لے. اگر مسلمان کے اندر خوبی ہوگی, وقت کا بادشاہ بھی اس کو بلائے گا. ہم نفس کے جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں, میں اوپر میں نیچے, مجھے اوپر کرتے مجھے نیچے کرتے, میری عزت نہیں میرے فلاں, اور اتنا نفس موٹا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو خوبی ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے. یاد رکھیے, آپ میں ایک خوبی ہو لیکن اس کے ساتھ ایک کوئی ایسی عادت ہو جو آپ کو اس کے ساتھ ریپیل کر دے گی, آپ کی وہ خوبی ختم ہو جائے گی. اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان کتنا کس چیز کے ساتھ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل خواہش نہیں کی تھی کہ وہ مصر کے بادشاہ بنے, وزیر خزانہ بنے, لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ آؤ یوسف, اب تمہارے دن بدل رہے ہیں. اور یہاں سے اب یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سبحان اللہ خوبصورت دور شروع ہو رہا ہے, ساری زندگی کے صبر کا. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ بہت دیتا ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو حالات کے اتار چڑھاؤ میں سے گزار کر ایک ایسے مقام پہ لے آتا ہے کہ پھر بندہ کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے یقین آ گیا کہ تیری جنت بھی سچ ہے. जिस तरह तूने दुनिया में मुझे सब्र का फल दिया ना, तू मुझे आखिरत में देगा। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि तेरा वादा सच है। तू सब्र के फल देता है, तू तकवा के फल देता है, और यूसुफ की ज़िंदगी का ये दौर है। अब ज़रा इमेजिनेशन करें, व्हाइट हाउस से मैसेज आता है आप में से किसी के शौहर के नाम के, आइए जी हम आपको जॉब ऑफर करते हैं क्योंकि हमने आपकी बड़ी धूम सुनी है, पाँव भी ज़मीन पे नहीं पड़ेंगे। और क्या व्हाइट हाउस और क्या ब्लैक हाउस, जो उस दौर की बादशाहतें थी वो तो बिल्कुल फ़र्क थी। अच्छा, हम होते तो उल्टे कदमों चल के पहुँचते, लेकिन यूसुफ ने कहा सॉरी मैं नहीं जा सकता। फलम्मा कल्लमहु काल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी थी क्या, कि मैं नहीं आऊँगा जब तक कि मेरे ऊपर लगा हुआ इल्ज़ाम ना धुले, और वो इल्ज़ाम हमने पिछले पारे कैड में देखा कि धुल गया। जब बादशाह ने कहा जाओ यूसुफ को बुलाओ, मैं इसको खालिस करता हूँ, फिर यूसुफ आए, और जब यूसुफ ने उससे गुफ्तगू की तो उसने कहा अब आप हमारे यहाँ कद्रो मंजिलत रखते हैं और आपकी अमानत पर हमें पूरा भरोसा है। यहाँ देखिएगा फलम्मा कल्लमहु, इसको अगर आप समझ जाएंगे ना तो फिर आपको एक और बात समझ आएगी कि पहले तो उसने यूसुफ के किस्से सुने थे, धूम सुनी थी, लेकिन जब यूसुफ ने आके कलाम किया तो बादशाह का दिल और मोह लिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बस दफ़ा आपको बाज़ ऐसे लोग रेफ़र किए जाते हैं जिनके बड़े शोहरे होते हैं, फ़लाँ बड़ा अच्छा, फ़लाँ बहुत अच्छा, फ़लाँ ऐसा फ़लाँ, लेकिन जब आके वो आपसे बात करते हैं तो आप असेस करते हैं, नहीं बात झूठी थी, जिसने तारीफ़ की है वो भी भोला ही है, वो भी ऐसा ही है। हज़रत यूसुफ़ की शख्सियत में जो ख़ूबी थी, सिर्फ़ कलाम से बादशाह को यकीन आ गया कि आपकी अमानत पे हमें यकीन है। क्या आज के मुसलमान पे गैर मुस्लिम को ऐसा यकीन है? हम धोखा दें, हम दिखाएं कुछ लगाएं कुछ, हमारा मामला ये अजीब व गरीब हो, तो ऐसे वक्त में यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऑफ़र हुई। अब आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इसके बाद क्या करते हैं। पहले तो आपने कोई बहुत ज़्यादा इस खुशी का इज़हार नहीं किया कि भाई वाह अच्छा ठीक है ये वो है, लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को लगा कि इस मुल्क पे कहत आने वाला है, अब ज़रा मेरी ये तमहीद सुन के फिर अगली आयत पढ़िएगा वरना मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के ख्वाब से ये समझ चुके थे कि अब इस मुल्क पे मुश्किल दिन आने वाले हैं, और ये वो वक्त होते हैं जब लोग कुर्सियाँ से उतर के इकतदार की चाबियाँ दूसरों को देने के लिए होते हैं, कि डूबती कश्ती में से तो लोग निकलते ही हैं, वो उसमें नहीं आते। लेकिन यूसुफ का वसफ़ देखिए, कालज अलनी अला खजाइन लर्दी इन्नी हफीजन अलीम। यूसुफ ने कहा मुल्क के खजाने मेरे सपोर्ट कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। ये कोई इकतदार की ख्वाहिश थी? ये कोई खजाना भरने वाली बात ही, खजाना खाली हो रहा है। लेकिन यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार एक मुसलिह का किरदार है। जब इंसान देखे कि मेरे अंदर कोई खूबी है और किसी दूसरे को मेरी सलाहियतों की ज़रूरत है, तो ईमान और तकवा वाला घर नहीं बैठता, सीधी सी बात है। उसको पता लग जाता है कि इनके इस मुश्किल में मैं ही काम आऊँगा, और अगर ऐसे वक्त में यूसुफ अलैहिस्सलाम ये ऑफ़र ना देते तो गोया कि यूसुफ ने अपने उस टैलेंट को और उस खूबी को छुपा लिया। लोगों ने इस पे तफसीरों की तफसीरें लिख दी कि क्या गैर मुस्लिम का ओहदा कबूल करना चाहिए और क्या खुद से ओहदा मांगना चाहिए, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मांगे उसको बिल्कुल ना दो। ये सही हदीस है, जो इक्तदार मांगे उसको बिल्कुल ना दो, जो बड़ा बनना चाहे उसको बिल्कुल बड़ा ना बनाओ। क्यों? कि उसके अंदर बू आ रही है एक बात की। हज़रत अबू बकर को जब किसी लोगों ने हुक्मरान बनाया, कहा मैंने नहीं बनना। उमर को कहा तौबा करो मेरे ऊपर ना ये बोझ डालो। हज़रत अली उस्मान कहने लगे नहीं नहीं किसी और के ऊपर ये बोझ डाल दो, मुझ पे ना डालो, हमें तो माफ़ कर दो। लेकिन यूसुफ ने यहाँ किस अंदाज से मांगा, खिदमतगार, सईदु खादिमु कौमहुम। सरदार होता है वो अपनी कौम का खादिम होता है, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ओहदा मांग लिया। बादशाह को और क्या चाहिए था, वो तो पहले ही परेशान था अपने ख्वाब के ज़रिए से। असल में तो ये बातचीत हो रही थी बादशाह और यूसुफ के दरमियान, लेकिन अल्लाह ताला का कमेंट देखिए, वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ध यतबव्वउ मिन्हा हैसु यशा नुसीबु बिरहमतिना मन नशा वला नुदीउ अजरल मुहसिनीन। इस तरह हमने इस सरजमीन में यूसुफ के लिए इक्तदार की राह हमवार की। किस तरह कज़ालिका, इतना बड़ा है कि पीछे यूसुफ के सारे सदमे हैं। बाप की गोद से निकाल कर कुएं में, कुएं से निकाल कर अजीज़ मिस्र के घर, वहां से निकाल कर उनकी बीवी के ट्रैप में, फिर वहाँ से जेल में निकाल के कज़ालिका तब मिलती हैं ये खूबियां जब इंसान इतने थपेड़े खाता है। रोटी ऐसे नहीं पकती, बेलने में बिलती है, हाथों में झड़ती है, फिर सेक लगता है, फिर उसको ऊपर से कपड़े से दबाते हैं, फिर आग पे डालते हैं, क्या कुछ करते हैं। ये है कज़ा लिखा। कभी आपकी ज़िंदगी में कोई आजमाइश आए और दीन की आजमाइश आए, और खुशकिस्मत है वो लोग जो दीन के लिए आजमाए जाते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे कि हम में से किसी पे आए, क्योंकि हमारे ईमान इतने नहीं, लेकिन आप में से जिस पर दीन के रास्ते में आजमाइश आ रही है वो अल्लाह ही आपका कज़ालिक है। आपको अल्लाह ने इसके बाद चुनना है और बड़े पे चुनना है। जितनी बड़ी मुसीबत आती है उसके पीछे उतनी बड़ी खैर आती है। अल्लाह देख रहा है आपको कितने पक्के हैं। आप आए में कराम की ज़िंदगी पढ़ें, मुहद्दसीन की ज़िंदगी पढ़ें, लोगों ने उनको जेलों में बंद कर दिया। उन्होंने कहा मैं यहाँ भी खड़े होकर यही कहूँगा कि अल्लाह का कलाम है कुरान, अल्लाह की मखलूक नहीं है। और लोगों को जमे गफीर की सूरत में उन्होंने जेल की दीवारों से चिपकते हुए देखा। इसलिए कभी घबराया ना करें, खुशी हुआ करें, चुपके से मुस्कुराया करें। अल्लाह आ गई मेरे ऊपर ये मुश्किल जो यूसुफ पे आई थी, जो इब्राहिम पे आई थी, वो कभी माँ बाप की तरफ से हो सकती है, कभी शोहर की तरफ से है। तो आप उस वक्त कभी भी आसिया को याद कर लें, देखें कैसे अल्लाह ताला आपके लिए राहें हमवार करता है। अल्लाह ने अपने दीन का काम आम लोगों से नहीं कराना। मेरे आप जैसे लोग बस अपने लिए नेकियां कर रहे हैं। अल्लाह ने जब लोगों की हिदायत के लिए किसी को चुनना होता है, अपने दीन के इस्तेहकाम के लिए किसी को चुनना होता है, तो अल्लाह यूं छानता फटकता है कि सारी चीज़ें दिल से निकल जाएं। क्योंकि एक भी खामी नफ्स की आ गई ना, वो बर्रियु नफ्सी अली, तो वो सारे दीन के काम का चौपट कर देगी। खुद भी नहीं पता होता, पूरे इखलास के बावजूद हमें नहीं पता होता हमारी तबीयत में क्या गंदगी है जो ख़राब होगी। यकीन करें मेरी दुआओं में एक दुआ इतनी ज़्यादा होती है, और हमेशा थी और अब और भी होती है, कि अल्लाह मेरी किसी आदत की वजह से दीन का नुकसान ना हो, मेरे तबीयत में कोई ऐसी चीज़ ना आए कि तेरा इज्तमाही नुकसान हो जाए। जैसे अगर जहाज़ में बैठे हुए लोगों में सिर्फ एक ही बंदा शीशा तोड़ दे खिड़की का, तो सारे गिरेंगे ना। इसी तरह बाज़ दफ़ा दीन का काम करने वालों की शख्सियत में कोई एक आध ऐसी बुराई होती है, कोई एक आध ऐसी केयरलेसनेस होती है, तो डूबे हैं तुमको भी ले डूबते हैं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिस्र में दिया। कभी इस जुमले को कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ को भाइयों के उस जुमले से ज़रा सोचिए, क्या यूसुफ को कुएं में फेंका है। मेरे तसव्वुर में ऐसे लगता है कि जैसे सी सॉ है ना, भाइयों ने सबसे नीचे फेंकना चाहा, अल्लाह मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्थ। और अभी तो दुनिया की इज्जतें मिल रही हैं, अभी उन दुश्मनों के सामने भी अल्लाह उनको लाएगा जिन्होंने क्या सोचा था और अल्लाह ने क्या कर दिया। यतबव्वौ मिन्हा हैसु यशा, वो मुख्तार था कि इसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं, और नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता, कभी नहीं मारेगा अल्लाह अजर। करके देखिए, चुपके में, रातों में, दिन में, सबसे छुपा कर अल्लाह जाहिर कर देगा। और आखरत का अजर इन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। यहाँ तक यूसुफ की ज़ाती ज़िंदगी हुई। अब इसके अंदर आगे कहानी महजूफ है, क्योंकि कुरान किस्से नहीं बयान करता, कुरान नताइज बताता है। वो सारे साल गुजर गए जिसको ख्वाब में देखा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतने खूबसूरत तरीके से गल्ले को महफूज किया बालियों में, कि ना सिर्फ ये कि मिस्र में अपने लिए खाना था, बल्कि दूसरों के लिए भी था। इसके बाद कहत आ गया। आमतौर पे होता क्या है कि जब कहत आता है या तंग दस्ती होती है, तो लोग दूसरे ही चीज़ों की कीमत और बढ़ा देते हैं, कि जब हमारे पास ये चीज़ आ गई है तो हम इसको अब दूसरों को नहीं देंगे। लेकिन यूसुफ चूँकि वज़ीर ख़जाना बन चुके थे, इन्होंने कानून क्या बनाया कि ना सिर्फ ये कि हम अपने मुल्क के लोगों को देंगे, बल्कि बाहर वाले दूसरों की भी मदद करेंगे। कोटा सिस्टम मुकर्रर कर देते हैं ताकि लोग हमारी इस नरमी का फ़ायदा नाजायज़ ना उठा लें, और इस तरीके से ज़रूरत का हम देते रहें। यही बात कदान तक पहुँच गई, भाइयों तक पहुँची। उनको कुछ नहीं पता, उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस वक्त वहाँ हमारे लिए वज़ीर ख़जाना के तौर पे बैठे हैं। लेकिन भोलपन में ही वजा इख़वतु यूसुफ़ा, और आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बस उसके सामने हाजिर हुए, और उसने इनको पहचान लिया, मगर वो उससे नाश्ना थे। यूसुफ ने पहचान लिया, वो ना पहचान सके। क्यों? क्योंकि वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि यूसुफ तख्त पे बैठा होगा। और यूसुफ ने कैसे पहचान लिया? मोमिन की फरासत होती है, उसको लोगों के चेहरे भी दिखते हैं, उसको अंदर भी दिखता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इत्तकु फरासतुल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि इसको अल्लाह की बुरहान मिलती है। जितना दिल के बर्तन को साफ करते जाएंगे, आपको लोगों के अक्स अपने चेहरों में दिखेंगे, फिर आप कभी लोगों को मिसअंडरस्टूड नहीं करते, इल्ला माशाल्लाह। यूसुफ अलैहि सलाम पहचान गए और उनको कहा, अब हम होते तो क्या कहते, सारे दरबार में उनको रुसवा करते, लेकिन यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ालतूनी बिअख़िल्लकुम मिन अबीकुम, फिर जब इसने इनका सामान तैयार करवाया तो चलते वक्त इनसे कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना। ये कैसे पता चला? बातों बातों में इनसे उनकी कहानी सुनी, उन्होंने कहा हमारा एक भाई है, बिन्यामीन की तरफ इशारा है, और यूसुफ उनको मिलना चाहते थे, तो कहा कि देखो अगली दफ़ा उसको लेकर आना, देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूँ और कैसा अच्छा मेहमान नवाजूँ, और अगर तुम इसे ना लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं, बल्कि तुम तो मेरे करीब भी ना फटकना। उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे, वालिद साहब इसे भेजने पर राजी हो जाए और हम ऐसा ज़रूर करेंगे। ये उनको गिल्ट था ना, बाप हमारे ऊपर दोबारा एतबार ना करें। यहाँ से पता चलता है कि जब इंसान गुनाह करता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। एक दफ़ा आप कभी कोई गलत काम करते हैं ना, तो फिर आप उसी की वजह से नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं पाते, और इनको भी कुछ ऐसा ही लगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलामों को इशारा किया कि इन लोगों ने गल्ले के इवज़ जो माल दिया है वो चुपके से इनके सामान ही में रख दो। यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुँच कर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान लेंगे, या इस देने पर जो उन्होंने देखा कि ये तो फयाजी हो गई हम पे कि इतना लोग माल जो था ले भी आए, खाना भी, पैसे भी आ गए, और अजब नहीं कि वो फिर पलटें। इस एक जुमले में दो तीन वजूहात आ गई कि यूसुफ ने उनको सामान क्यों दिया। पहली बात यह कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उन पर एहसान करना चाहते थे हुस्ने सलूक के तौर पर। असल में ये मोमिन की शान है कि वो दोस्तों पर इतना मेहरबान नहीं होता जितना दुश्मनों पर होता है। इस जुमले को अलग से लिख लें और अपने आप को चेक करें, मोमिन की शान क्या है कि वो दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों पे मेहरबान होता है, क्योंकि दोस्त तो अपने हैं, दुश्मनों को अपना बनाना है। ये असूल पता नहीं ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है। कोई जितना आपका अपना होता है ना, उसको आपकी बातों की इतनी परवाह नहीं होती, चलो खैर है ना, ये तो अपना है, लेकिन गैरों के साथ और ख़ास तौर पर जो आपको दुखाएं, जो आपको सताएं, ये अखलाक बंदे को बहुत बुलंदियाँ देता है। याद रखिए यूसुफ की ज़िंदगी से भी हमें यही मिल रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मिल रहा है। अगर आप बड़ी बुलंदियाँ पाना चाहते हैं ना, तो आप उन लोगों के साथ नरमी करें जो आपके साथ सख्ती करते हैं, और उनके साथ मोहब्बत करें जो आपके साथ नफ़रत करते हैं, उनके बारे में नेक नामी की बातें करें जो आपको बदनाम करना चाहते हैं। और यूसुफ ने ये इस वजह से किया। दूसरी वजह ये भी थी कि चलो पैसे देने के बहाने दोबारा आएंगे, ये भी तो एक वजह है ना, क्योंकि उनको पता था कि शायद ये ना आए और यूसुफ उनको बुलाना चाहते थे, तो एहसान कर दिया। और तीसरी वजह यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल चाहा, कोई भी वजह हो सकती है। अब बेटे घर आते हैं, अल्लाह ताला ने ये सारा मामला आगे पलटाया और बेटे अब मिस्र से वापस आते हैं और अपने बाप के पास आते हैं। फलम्मा रजउ इला अबीहिम, बस जब अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है। इस जुमले को नोट कीजिए, ये होते हैं नेगेटिव बात करने लगे, हालांकि वो भी नबी थे, नबी के बेटे थे, बाद में उनके साथ जो भी है, लेकिन ये देखिए ये हैं एटीट्यूड्स। जुमलों की ज़ुबान में अपने आप को पहचाने। कुछ लोग उनसे पूछे सुनाएं कैसा रहा, वो क्या कहते हैं, सब ठीक था माशाल्लाह, बस ये एक दो चीज़ें थी वो बाद में डिस्कस करेंगे। और दूसरों से पूछें कैसा रहा, कहते तौबा तौबा, कुछ ठीक नहीं होता। हाँ कुछ लोग हैं वो अच्छा भी करते हैं, ये आपकी शख्सियत बोल रही है। होते हर जगह दोनों तरह के लोग हैं, याद रखिए, सोने के अंदर भी खोट मिलता है तो सोना घटता है। ये नहीं हो सकता दुनिया में, तो ये नहीं हो सकता कि कहीं 100% लोग सारे ठीक हों, हर काम जो हम करें हम उसे मुतमईन हों, जन्नत में होगा। लेकिन आप अपने एटीट्यूड को पहचानें, कभी भी लोगों की गलत बात को पहले ना लगाएं। यहाँ उनके भाइयों के अंदाज से पता चल रहा है कि इनसे इतना बड़ा जुर्म क्यों हुआ, इनका एटीट्यूड प्रॉब्लम था, भाई को कुएं में फेंक दिया, इससे भी बुरा काम कोई कर सकता है, क्यों किया, क्योंकि उनका एटीट्यूड ठीक नहीं था। अच्छा याद रखिए, इसका नेकी और बदी से कोई ताल्लुक नहीं ज़्यादा होता कभी। अल्लाह के लिए लोग बड़े नेक होते हैं, नमाजी, तहज्जुद गुजार, रोज़े, उम्रे, लोगों में मामला आएगा ना तो हमेशा नेगेटिव बात, सेंटेंस ऐसा हर वक्त यही बात, इतने आसान हुए ये छोड़ दी बात, बस अब बुरी बात से शुरू कर दिया, हमें ये कह दिया गया। अच्छा छोटे बच्चों की अक्सर आदत होती है, आप देखे वो स्कूल में आते हैं ना तो सारा दिन कितना कुछ भी टीचर्स उनको पढ़ाएं लिखाएं खिलाएं पिलाएं, कोई एक नेगेटिव बात उनकी हो जाए ना किसी दोस्त से या कोई डांट दे, तो घर जाते मुंह बसोरे होंगे, आज हमें डांटा अब कल से हम नहीं जाएंगे, ऐसा होता है, चाइल्डिश एटीट्यूड होता है। तो बाप को उन्होंने जाके सुना दी ये बात, हम तो नहीं जाएंगे और हमें तो उन्होंने देने से मना कर दिया, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आएं, और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं, इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं, यानी पहले हम नहीं कर सके थे यूसुफ की हिफाजत, लेकिन अब हम करेंगे। अब बाप का जुमला तकरीबन 40 साल के सब्र के बाद, ताना नहीं है, मौका आया तो कहा, काल हल आमनकुम अलैहि इल्ला कमा मिन तुम अलै अला अखीही मिन कबल। बाप ने कहा, क्या मैं इसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले इसके भाई के मामले में कर चुका हूं, अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। ये है हेल्म वाला बाप। जब तक बच्चे दोबारा वही गलती ना करें जो पहले कर चुके, उनको आर ना दिलाइए। अगर हजरत याकूब इन 40 सालों में हर वक्त बेटों को कोसते, हाँ तुमने भाई को ये किया वो किया, तो इस वक्त या क्या इस जुमले का कोई मोल पड़ता? नहीं पड़ता। जुमले का, आपकी बात का मोल कब है? जब वक्त हो। बड़े लोग कहा करते थे, बात तो वो जो वक्त पे हो, हाँ वेले दी नमाज तक वेले दी या टकरा, जो बात वक्त पे होती है ना उसका मज़ा आता है। रोकें, सब्र करें, एक हफ्ता भी इंतज़ार करना पड़े ना, मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें कि तब मैंने ये जुमला बोलना है, एक साल भी इंतज़ार करना पड़े तो करें, लेकिन हर वक्त ना बोलें। हम जब अपनी बातें हर वक्त बोलते रहते हैं और हर वक्त टोकते रहते हैं ना, तो हमारी बात का असर ख़त्म हो जाता है और लोगों को आदत भी नहीं रहती, असर ही ख़त्म हो जाता है। फिर हम कहते हैं हमसे डरते ही नहीं लोग, हमारी बात ही नहीं बच्चे मानते। नहीं, आप चेक कीजिए कि हमारा मामला उनके मामले में क्या है। खैर, साथ ही अल्लाह पे बात डाल दी, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतरीन रहम करने वाला। ये बातें हो रही थी, साथ ही गल्ले के जो थैले थे वो खोले, वलम्मा फतहु मताअहुम वजदू, और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि इनका माल इनको वापस कर दिया गया। ये देख कर वो पुकार उठे, अब्बा जान और हमें क्या चाहिए, देखिए ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया, बस अब हम जाएंगे और अपने अहलो याल के लिए सामान लेकर आएंगे और अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक ऊंट के बराबर सामान और भी ज़्यादा लेकर आएंगे, इतने गल्ले का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। यहाँ से भी भाइयों का एटीट्यूड थोड़ा सा दिख रहा है कि ग्रीड का थोड़ा सा असर दिख रहा है और फ़ायदे के हसूल के लिए फिर जाने को तैयार है। इनके बाप ने कहा, मैं इसको हरगिज़ तुम्हारे साथ न भेजूँगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमान न दे दो कि इसे मेरे पास ज़रूर वापस लाओगे, इल्ला ये कि तुम ही घेर लिए जाओ। ये तुम ही घेर लिए जाओ कौन सा जुमला है? ये मोमिन की फरासत है। बाप को पता था कि इन बेटों से जुर्म हो चुका है, अभी तक अल्लाह ने इनको पकड़ा नहीं है, लेकिन किसी भी लम्हे पकड़ लेगा। वो कहते हैं ना, ना जाओ उसके तहम्मुल पे, कि बड़ी सख्त है उसकी पकड़, अल्लाह वक्त का इंतज़ार करके पकड़ता है। तो बाप को अंदेशा था कि कहीं ना कहीं घेरे जाएंगे, अब वो बादशाह के ज़रिए घेरे जाएं या किसी और मसले में, तो बाप ने अपने ख़दशे का इजहार कर दिया। जब उन्होंने इसको अपने अपने पैमान दे दिए तो इसने कहा, देखो हमारे इस कॉल पर अल्लाह निगेबान है। यहाँ देखिए कि हज़रत यूसुफ़ को जब भेजा था तो ये कॉल इकरार नहीं हुए थे। इससे पता चलता है कि जब हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं ना अपने बच्चों को, अपनी चीज़ों को, तो फिर अल्लाह उनको काफ़ी भी हो जाता है। फिर इसने कहा, मेरे बच्चों, मिस्र के दारुल सल्तनत में एक दरवाज़े से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से जाना। ये भी उनकी हिकमत अमली थी। क्यों किया? कि शायद नज़र ना लग जाए, लोग कॉन्शियस ना हो जाएं कि इतने लोग एक ही जैसे रंग रूप के एक ही हुलिये के बाहर जाएंगे तो लोग थोड़े से कॉन्शियस हो जाएंगे तो नज़रें रखेंगे, और दूसरे बात का भी डर है। लेकिन साथ ही अपना ईमान भी बता दिया, वमा उखनियन कुमिन अल्लाह मिन शई, मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको फिर भी नहीं बचा सकता, हुक्म इसके सिवा किसी का नहीं चलता, इसी पर मैंने भरोसा किया और इसी पर भरोसा चाहिए जो भी करे। क्या पता चला कि मैं प्रिकॉशंस तो ले रहा हूँ लेकिन होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। और वाकया भी यही हुआ कि जब अपने बाप की हिदायत के मुताबिक शहर में मुतफरिक दरवाज़ों से दाखिल हुए तो इसकी ये एहतियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ कम ना सकी। हाँ, मगर याकूब के दिल में जो एक खटक थी, कसक थी, इसे दूर करने के लिए इसने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम से साहबे इल्म था, मगर अक्सर लोग मामले की हकीकत को नहीं जानते। यहाँ भी एक बड़ा खूबसूरत असूल है, और वो क्या कि मोमिन अपनी सी पूरी कोशिश करता है फितनों से बचने की, बीमारियों से, तकलीफ़ों से, नज़रबद से, लेकिन फिर जो भी होना है वो अल्लाह के हुक्म से होना है। अल्लाह का आखिरी फैसला है, जो चाहे करे, जिस तरह चाहे करे, लेकिन अक्सर लोग इस बात को समझते कोई नहीं है। ये ऐसी चीज़ है कि जो वक्त पढ़ने पे समझ आती है। अल्लाह की ज़ात बंदे को इसी तरह से उसकी कमी का एहसास दिलाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का एक कौल है कि मैंने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना। कोई ज़ात है जो मेरे इरादे तोड़ती है? इसी तरह हमारे प्लान्स फेल होते हैं तो हमें खुदा याद आता है। वलम्मा दखलु अला यूसुफ आबा इलैहि अखाहु, ये लोग यूसुफ के पास पहुँचे तो इसने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया और इसे बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूँ, यानी जो खो गया था। अब तो इन बातों का गम न कर जो ये लोग करते रहे। ये कौन से भाई से कहा? बिन्यामीन से कहा। इस जुमले से मुफसरीन कहते हैं कि उन्होंने बिन्यामीन को भी सताने की कोशिश की थी, तभी तो कह रहे हैं जो ये तुम्हारे साथ कर रहे हैं तुम इसका गम ना करो। अच्छा, यहाँ एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, फला तबता, इस इसको हाईलाइट करें। कितने साल के बाद दो भाई बैठे हैं और दुख सुख क्या हो रहे हैं? भाई क्या कर रहे हैं? दूसरे भाई को तसल्ली दे रहे हैं, गम ना करो। हम क्या करते हैं जब पाकिस्तान जाते हैं 7-8 साल बाद? अल्लाह मेरी सास मरहुमा को माफ़ करे, पर मैंने कोई नहीं करना। अच्छा, मैंने फील किया कि कुरान पढ़ने के बाद जब आपकी एक ज़िंदगी का स्लॉट चलता है शुरू में, तो लोग इसलिए भी थोड़े आपसे ऑफेंड होने लगते हैं कि आप उनके दुख नहीं सुनते। आप नोट करके देखें, आप उनकी बात नहीं ज़्यादा सुनते, वो चुगली करना चाह रहे हैं, आप उनको टाल रहे हैं। चाहे वो आपकी कोई माई क्यों ना हो, आपकी बहन क्यों ना, वो दुख सुख करना चाहते हैं, आप उन्हें चल कोई नहीं, फिक्र नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से उनको ठंडा करना चाहिए, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। हम जिसका गम सुन लेते हैं ना, उसको और बढ़ाते हैं। एक ज़ात है जो आपका गम सुन के कम करती है, और वो अल्लाह की ज़ात है। जख्म को भरने ना देंगे, ना बार बार खुरे देंगे, ना क्रीड नहीं आएगा। कभी अपने बहन भाइयों, माँ बाप, उनकी बातों पे इस तरह ना करें। अच्छा, बस अब होता है कि कोई आपको सुनाता है ना, तो फिर उसको थोड़ा सा दिल ठंडा महसूस होता है, उनकी बातें सुन लें, फिर उसके बाद वो अपनी कहानी जो है वो, मतलब उसमें किसी की बुराई ना हो तो सुनते जाएं। किसी बड़ों का दुख भी सुन सकते हैं आप, सिर्फ इस सोच में कि इनका दिल हल्का हो जाए, लेकिन आखिर में उसको फिर ऐसा खूबसूरत तरीके से कर, नहीं नहीं अम्मी आप ऐसे सोच रही हैं, ऐसा नहीं है, नहीं बाजी आपका ये ख्याल है वैसा नहीं है, हकीकत ऐसे नहीं वैसे है। तो कभी कभी ऐसे ऐसे हालात आ जाते हैं ज़िंदगी में कि दूसरे की बात को सुन के जब हम उसको और ज़्यादा शह देते हैं ना, तो वो और दुखी होता है। जैसे कोई बहुत ही हो ना, अच्छा अक्सर माएँ ये बहुत करती हैं, खुद ही बच्चे को अंडर कॉन्फिडेंट कर देती है ना, हाँ हाँ बच्चा मेरा थक गया होगा, सर में दर्द हो रहा है ना, चल के आए हो, वो अच्छा टांगे थक गई, नहीं आप हिम्मत बनाए, हाँ सुबह से काम पे आप लगे हुए, वो और इनको रोना आएगा, पता नहीं मैं ही बेवकूफ़ बन गया हूँ जो काम कर रहा हूँ और दूसरे नहीं कर रहे। तो हमेशा फला तबताइस, डोंट वरी, और इंग्लिश में कितना आम है लफ्ज़ कि गम ना कीजिए, ये हो जाएगा, जो भी ये करते थे बस सब फिक्र ना करो। फलम जहाज़ हूँ, अब दूसरा वक्त आ गया रुख्सती का, पहले भी एक दफ़ा रुख्सत हुए। ये लफ्ज़ देखिए, जहाज़ हूँ वही है जिसको हम जहेज़ कहते हैं, इसी से निकला कि वो भी रुख्सत होती है और लड़की तो उसको जहेज़ देते हैं। यहाँ भी यही सामान हो गया कि अब दोबारा सामान तैयार हो रहा है। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इन भाइयों का सामान तैयार करवाने लगे, तो इन्होंने अपने भाई के सामान में एक प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफले वालो, तुम चोर हो। उन्होंने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज़ चोरी हो गई? सरकारी मुलाजमों ने कहा कि बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता, यानी बादशाह जिसमें पानी पीता था वो प्याला नहीं मिल रहा। और एक पुकारने वाले ने कहा कि जो शख्स लाकर इसको देगा, उसके लिए एक ऊँट के बराबर वजन का गल्ला इनाम में दिया जाएगा और मैं इसका जिम्मा लेता हूँ। इन भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम खुद जानते हो कि हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए और हम चोरियां करने वाले लोग नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सज़ा है? उन्होंने कहा, उसकी सज़ा जिसके सामान में से चीज़ निकले वो खुद ही अपनी सज़ा में रख लिया जाएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे जालिमों को सज़ा देने का यही तरीका है। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि चोरी हो रही थी मिस्र के मुल्क में, और चोरी जिन्होंने की वो मुस्लिम थे, या मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, लॉस का फ़र्क समझ लीजिएगा कि दीन इब्राहिमी में चोर की सजा क्या होती थी कि उसको 1 साल तक उसके घर में रहना पड़ता था जिसकी चोरी हुई है। अच्छा, मिस्र का कानून ये नहीं था। यूसुफ को ये सब पता था कि इस्लामी इस्तलाह में तो ये, और ये चाहते क्या थे कि भाई अब मेरे पास रहे, जुदाई भी है, और भाई को पास क्यों रखना था, ताकि अब इसकी मोहब्बत में बाप भी आए। ये इंसानी रिश्तों की बातें हैं। तो इन्होंने उनका कानून पूछा कि बताओ कि तुम्हारे यहाँ चोरी की क्या सजा। उन्होंने जब बता दी तो बस यूसुफ ने अपने भाई की उन थैलियों से पहले उस यानी यूसुफ ने अपने भाई से पहले उनकी थैलियों की तलाशी लेनी शुरू की, फिर अपने भाई की थैली से गुमशुदा चीज़ बरामद कर ली। इसी तरह हमने यूसुफ की ताईद अपनी तदबीर से की। ये जुमला हाईलाइट कर ले। सारे सवाल जो जहन में आते हैं ना, प्याला किसने रखा, क्यों रखा, कैसे रखा, और यहाँ लफ्ज़ भी फ़र्क है। एक जगह सिकाया का लफ्ज़ आ रहा है, एक जगह विया का लफ्ज़ आ रहा है। दो फ़र्क चीज़ें थी। ये मुबहम बात है, हम इस पर बात ही कोई नहीं करते। लेकिन बात ये बन गई कि बिन जमीन पे जुर्म साबित हो चुका है, लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम अब इस बात पे इसरार करते हुए दिखेंगे कि वो इस भाई को इधर रख लें। उसका काम ये ना था कि बादशाह के दीन यानी मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता, यानी मिस्र में ये सजा नहीं थी, इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे और हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं। और हकीकत क्या कि फ़ौक कुल्लिज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म रखने वाला है। ये कौन है? एक तो ये कि दुनिया के हर इल्म वाले पे अल्लाह ताला की ज़ात जो अलीम है वो है, लेकिन यहाँ अल के बग़ैर अलीम आया है तो यहाँ से एक कानून पता चल गया कि कोई ख़ुद को 30 मार खान ना समझे, कोई अपने ही उस्ताद को सबसे बड़ा ना समझे। दुनिया में हर इल्म वाले के ऊपर और इल्म वाला है, हर आलिम के ऊपर एक आलिम है, हर इमाम के ऊपर एक इमाम है, हर मुहद्दिस की बात के ऊपर एक और मुहद्दिस की बात है। ये इतना खूबसूरत असूल है जो बंदे का दिल खोल देता है। बस दफ़ा इल्म के साथ घुटन पैदा होने लगती है, लोग लकीर के फ़कीर बन के 10 साल पहले की लिखी किताब कहते हैं इसको इधर से उधर नहीं कर सकते, 20 साल पहले के किसी उस्ताद से बात सुनी है तो उस बात को इधर से उधर नहीं कर सकते। नहीं, फ़ौक कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम। और इधर एक और बात समझ लीजिए कि आपके बच्चे आपसे ज़्यादा ज़हीन है, जो फितरत का असूल बताया जा रहा है। अगर बच्चे बुद्धू पैदा होने लग जाएं तो नस्लें ख़त्म हो जाएं। इसलिए कभी अपने बच्चों पे ये रोक ना डाला करें कि तुम्हें नहीं पता मैं बाप हूँ और मैं माँ हूँ। नहीं, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा शार्प हो सकते हैं। बहरहाल, क़ालू यसरिक फ़कद सरका खुल्लहू मिन कबल। ये अब तीसरा मौका देख लीजिए भाइयों के मैनर्स और अखलाक का। जूँ ही देखा कि बिन्यामीन के सामान में से प्याला निकला तो अब दिल का बुग़्ज़ निकला। इन भाइयों ने कहा ये चोरी करे तो कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है, इससे पहले इसके भाई यूसुफ ने भी चोरी की है। अल्लाह, किसको कह रहे हैं? अच्छा, इंसान की अक़ल की कमी देखिएगा। एक तरफ कह रहे हैं या अय्युहल अज़ीज़, यूसुफ को कहते हैं या अय्युहल अज़ीज़, और दूसरी तरफ उसको चोर साबित कर रहे हैं। इंसान इतना कमज़ोर है। यूसुफ इनकी ये बात सुनकर पी गया और हकीकत इन पर ना खोली, बस ज़ेरे लब ये कहकर रह गया कि तुम तो बड़े ही बुरे लोग हो, यानी मेरे मुंह पे मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हो इसकी हकीकत अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। हम होते तो क्या करते, सारा गटअप उतार के बैठ के कहते इधर आओ मैं बताऊँ मैं कौन हूँ। अच्छे लोग नफ्स को दबाते हैं। आप देख लें ये जितनी चीज़ें ना, ये नफ्स के खेल चल रहे हैं। पहली आयत जो होती है ना पारे की, वो पूरे पारे में झलकती है। ये नफ्स की ही खराबियाँ और नफ्स की खूबियाँ दिख रही हैं। इंसान एक ही है, गोश्त एक ही जैसा है, खून हड्डी सब की एक है, लेकिन इंसान अपने मैनर्स मॉरल के ज़रिए से कहीं तख्त पे पहुंच जाता है और कहीं इतनी दौलत के बाद किसी के सामने भिखारी बन के खड़ा हुआ है। इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें नफ्स की शरारतों से बचाए, अपने नफ्स से। अल्लाह के नबी अपने खुतबों में ये बात शामिल किया करते थे कि वमिन शुरूरी अनफुसीना, अल्लाह हम अपने नफ्स की शरारतों से महफूज रहना चाहते हैं, लिहाजा तू हमें इसे महफूज रख दे। खैर, यहाँ से बात पलटी, कहने लगे कालू या अय्युहल अज़ीज़ इन्ना लहू अबन शैखन कबीरन, ए सरदार ज़ी इक़्तदार, यानी बड़ी इज्जत से बुला रहे हैं बादशाह सलामत, इसका बाप बूढ़ा है। अच्छा, अपना नहीं कह रहे, इसका कह रहे हैं, ये भी जुमला नोट करने, हमारा नहीं कह रहे, इसका कह रहे हैं, इसकी जगह आप हम में से किसी एक को रख लें, हम आपको बड़ा ही नेक इंसान पाते हैं। यूसुफ ने कहा बखुदा पनाह, किसी दूसरे शख्स को हम कैसे रख सकते हैं जिसके पास हमने अपना माल पाया इसको छोड़कर, अगर हम ऐसा करें तो हम तो जालिम होंगे। अब क्या हुआ, फलम मस्तई असू मिन हो, बस जब वो इससे मायूस हो गए और एक तरफ बैठकर बातें करने लगे, मशवरे करने लगे, इनमें से जो सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह के नाम पर क्या अहदोपैमान ले लिया था? इससे पहले यूसुफ के मामले में जो ज्यादती तुम कर चुके हो वो भी तुमको खूब मालूम है। अब मैं तो यहाँ से हरगिज़ ना जाऊँगा, यहाँ तक कि मेरे वालिद मुझे इजाज़त ना दें या फिर अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला फरमा दे कि वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम जाकर अपने वालिद से कहो कि अब्बा जान, आपके साहबजादे ने चोरी की है। ये एक और तीर आया, हमने इसे चोरी करते देखा नहीं है, जो हमें मालूम हुआ बस हम वही बयान कर रहे हैं, और गैब की बातों को तो हम जानने वाले नहीं। यानी बिन देखे जब बाप बेटा अकेला था, हम उसकी हिफाजत तो नहीं कर रहे थे ना, पता नहीं उसने कर भी ली होगी चोरी। यानी मुबहम लफ्ज़ बोल रहे, शक भी है इनको और उम्मीद भी है। और दूसरी बात है कि आप ये सारी बातें सुन के वसलिल करियत अल्लती कुन्ना फीहा, आप इस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहाँ हम थे। ये जुमला तब क्यों ना बोला जब यूसुफ को कत्ल करने के बहाने छोड़ के आ गए थे? क्योंकि झूठे थे ना। यहाँ पता चलता है जब इंसान सच्चा होता है ना, हर मुमकिन तरीके से उजर देता है, अपनी जान बचाता है। इस काफले से भी पूछ लीजिए जिसके साथ हम आए हैं कि हम अपने बयान में सच्चे हैं, यानी हर तरह से बेगुनाही साबित करते हैं। अब सोचिए बाप के दिल पर क्या हो गई। खाला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, ये फिर आ गया नफ्स, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्ना नफ्सा लम्मारा तुम बिस्सू। बाप ने ये दास्तान सुनकर कहा, दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को आसान बना दिया। बात ये है, यानी ये नफ्स के खेल हैं, लेकिन फसब्रुन जमील, अच्छा इस पर भी सब्र करूँगा और बखूबी करूँगा। क्या वईद कि अल्लाह इन सबको मुझसे ला मिलाए। वो सब कुछ जानता है और उसके सब काम हिकमत पर मबनी है। फिर वो इनकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गया और कहने लगा, या सफा अला यूसुफ, हाय यूसुफ। और वो दिल ही दिल में गम से घुटा जा रहा था। इसकी आंखें सफेद पड़ गई थी, यानी रो रो के आंखों के अंदर से पानी खत्म हो रहा था। बेटों ने कहा, खुदारा आप तो बस यूसुफ को ही याद करते रहेंगे, नौबत ये आ गई कि इसके गम में तो आप अपने आप को खुला देंगे या अपनी जान को हलाक कर देंगे। इसने कहा, मैं अपनी परेशानी और अपने गम की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करता हूँ, क्योंकि अल्लाह से जैसा मैं वाकिफ हूँ तुम नहीं हो। ये जुमला नोट कर लें। एक सच्चा मोमिन अल्लाह को उस तरह पहचान रहा होता है जैसे दूसरे नहीं पहचानते। उसको पता है कि मेरे साथ अल्लाह क्या मामला करेगा, अल्लाह को मेरे साथ कैसी ही मोहब्बत है और मैं क्या काम करूँगा। अच्छा, ये बातें हमें नहीं समझ आएंगी, हम बस इनको सुन के समझेंगे, लेकिन अगर याकूब अलैहिस्सलाम जैसा ईमान मिल जाए तो ये सारी बातें समझ आएंगी कि मेरा अल्लाह मुझे जानता है, मैं उसको भी जानता हूँ। बाजार बाज दफ़ा ऐसे जुमले बंदे के मुँह से निकलते हैं जो लगता है कि अच्छा जी बहुत आपको मान है, लेकिन वो लाड होता है, मान होता है। जैसे माँ के ऊपर बच्चे को, ओ मेरी अम्मी है, आई नो माई मॉम, नो प्रॉब्लम, मैं कह लूँगा उसको, वो मान जाएगी, थोड़ा सा रो के दिखाऊंगा वो मान जाएगी। ये याकूब अलैहिस्सलाम का यहाँ दिल है। और यहाँ ये भी पता चलता है कि क्यों ना बेटों को ताने दिए और दुख सुख सुनाए, क्योंकि अल्लाह को जो सुनाते थे। देखिए, अगर किसी को सुनाना है तो अल्लाह को सुनाइए, तो जो कुछ कर भी सकता है। हम उनको सुनाते हैं जो कुछ कर नहीं था सकते, बस हमें बाद में कह देते हैं, अच्छा सब्र कर लो, चलो फिक्र ना करो, चलो मैं कुछ करूँ, और बाद दफ़ा उलट मशवरे उल्टे सीधे दे के आ जाते हैं। तो इन्होंने कहा, मैं तो अपने गमों की किसी से शिकवा नहीं करता। बसी उस गम को कहते हैं बस, बेसिकली, या तो मेरे लिए बस कहते हैं वो गम जिसको छुपाना चाहें और छुपे ना, फैलना होता है ना, बस यो बसु, और यो बासून का लफ्ज़ भी आता है, यानी कि मैं गम छुपाना चाहता हूँ, छुप नहीं रहा, लेकिन मैं अल्लाह को ही अपना गम बताऊँगा। लेकिन देखिए, इस गम में बैठ नहीं गए, बल्कि बेटों से कहा, जाओ असबाब इख्तियार करो, या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ। फिर यूसुफ आए हुए, यूसुफ अब नहीं घूमे, लेकिन दिल में यूसुफ बैठे हुए ना, तो बिन जमीन से पहले यूसुफ का नाम आ गया कि बेटा जाओ यूसुफ और उसके भाई की कुछ टोह लगाओ और देखो अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से तो बस काफिर ही मायूस होते हैं। ये उम्मीद दिला दी, इससे पता चलता है गम मनाना नहीं चाहिए, काम शुरू कर दिया। फलम्मा दखलू अलैहि कालू, अब भाई तीसरी दफा जाते हैं। जब ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ के सामने पेश हुए तो उन्होंने अर्ज किया, ए अजीज, हम और हमारे घर वाले सख्त मुसीबत में मुब्तला हैं और हम कुछ हकीर सी पूंजी भी लेकर आए हैं, आप हमें भरपूर गल्ला अनायत फरमाएं और या तो हम पर खैरात ही कर दें। इसको भी हाईलाइट कर लें। व तसद्दक अलैना, कहाँ नाहनु उसबा, हम बड़ी जमात, हम बड़े, और आज कह रहे हैं कुछ खैरात ही दे दो, सदका ही दे दो। ऐसे लग रहा है कि अल्लाह के नबी के सामने मक्का वाले खड़े हैं और नबी सल्लम को कह रहे हैं कि आप हमें आज माफ़ कर दें। ये सब्र और तकवा वालों को इनाम मिलता है कि उनके दुश्मन उनके सामने भिखारी बन के खड़े होते हैं। जिन जुबानों ने आपके खिलाफ बातें की होती है ना, वो आपकी तारीफ के गुन गाएंगे। वल्लाही अगर आपका अखलाक अखलाक यूसुफ होगा, आर नहीं दिलाई, भाइयों को कुछ कहा नहीं, बेहतरीन इंसान वो है कि जिससे उसका दुश्मन भी उसकी ज़ुबान की बात से महफूज हो। आप चेक करें अपने आप को, फैमिली में कई लोगों से आपकी ईंट पे टिक होती रहती होगी, वो आपके सामने जब आते हैं तो क्या वो आपसे महफूज होते हैं, या वो इस धड़के का शिकार होते हैं कि हाय अल्लाह की पनाह, ये दिख गई ये शादी में, अब इसने सुना देना है मुझे कुछ। अगर आप ऐसे अखलाक के ना, तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आएगी। दुश्मन आपसे मामून हो, अमन में हो, मुझे नहीं ये कुछ कहेगी, ये बाहर नहीं मुझसे कोई बात करेगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये यकीन था उनके भाइयों को, और यूसुफ अलैहिस्सलाम दिल में उनके लिए क्या कुछ रखते हैं। काल हल अलिम तुम मा फाल तुम भी यूसुफ, अब यहाँ ड्रॉप सीन है। अब यूसुफ का दिल इतना पिघला कि हाय भाई भीख मांग रहे हैं, तो अब न रहा गया, कहने लगे तुम्हें कुछ मालूम है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? हाँ, लेकिन जबकि तुम नादान थे। इसको हाईलाइट कर लीजिए, इज़न तुम जाहिलून, साथ ही उनको साइड दे रहे हैं, नहीं नहीं तुम नादान थे इसलिए तुमने किया। कालू अन्नक लअन्त यूसुफ, भाई चौंक कर बोले हाँ तुम यूसुफ हो। इसने कहा हाँ मैं यूसुफ हूँ, ये नहीं कहा मैं अजीज़ मिसर फलां 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 और फिर उसके भाई यूसुफ हूँ, अना यूसुफ। देखिए इस अना यूसुफ में कितना तहम्मुल है, कितना, हमारा तो कोई ओहदा लग जाए तो हम किसी को नाम बताने से पहले वो बताते हैं मैं फलां फलां जगह फलां हूँ, अना यूसुफ हा जाखी, और ये मेरा भाई है। कद मन्नल्लाहु अलैना, इसको भी हाईलाइट कर लें, हाँ हम पर अल्लाह ने एहसान किया है। देखिए जब लोग आपके साथ बुराई चाहें और अल्लाह आपको उसके बदले में इज्जतें दे, खूबियां दे, तो आपने लोगों से क्या लेना है? आप तो कहें लोगों को और हमें सताओ, हमें और दुख दो, हम खुद ही आगे आ जाएंगे। हमें अल्लाह दे रहा है, तुमसे लेके क्या मिलेगा? अल्लाह से लेंगे, अल्लाह आपको उतनी और सुकून देगा, अल्लाह ताला आपको उतनी और इज्जत दे देगा कि अल्लाह ने हम पर एहसान कर दिया। और हकीकत भी यही है कि अगर कोई तकवा और सब्र से काम ले तो अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक लोगों का अजर मारा नहीं जाता। قالوا تالله لقد آثرك الله علينا, उन्होंने कहा बखुदा कि तुमको अल्लाह ने हम पर फजीलत बख्शी, और वाकई हम खताकार थे। ये किसकी ज़िंदगी में आता है जुमला, जिसने अल्लाह पे मामले डाले आते हैं। कई सास बहुओं की लड़ाइयाँ देखी होंगी, अपने शोहरों बीवियों के मामले देखे होंगे, सगे भाई बहनों की लड़ाइयाँ देखी होंगी, लेकिन ये लकद आसरक अल्लाह वाले जुमले अपने दुश्मन से वही सुनेगा जो मैं यत्तकी व यस्बिर। हम अपने मामले खुद ही न बैठाते हैं, लड़ लुड़ के छोड़ छा, हम नहीं छोड़ते अल्लाह पे, कहते मैं कर लूँगी, मैं पूछती हूँ, फिर दुश्मन हमारे दोस्त नहीं बनते। ज़िंदगी में चेक करें, पिछले 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल, किससे आपका मामला बिगड़ा और आपके हुस्न सलूक के नतीजे में उसने आके आपको कह दिया कि मैं आपको मान गया। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? अब आपको मैं याद करवाऊँ वो जो हमारी 7 हैबिट्स थी, ये कौन सी पॉलिसी होती है? सब भूल गए, मुझे पता है आप फिक्र नहीं करें, लेकिन मैं भी आपको कुछ नहीं कहूँगी। ये है विन विन, तुम भी जीतो हम भी जीते। यूसुफ़ के भाइयों के साथ यूसुफ ने विन विन पॉलिसी रखी। दूसरे को शर्मिंदा करके क्या मिलेगा? मोहब्बत नहीं मिलेगी, गालिब आप हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि दुश्मन दोस्त बने, तो फिर आप उनके साथ विन विन बने, शर्मिंदगी ना दिलाएं, आर ना दिलाएं, आपने मेरे साथ ये किया। बास तो पहले दिन से बात शुरू करती हैं, जब मैं आई थी तो उस दिन से मेरी सास ने मेरे साथ ये बात की थी, और शोहर से भी पहली लड़ाई से बात शुरू करके आज 2012 में पहुँचेंगे। कभी किसी के साथ ऐसा मामला ना रखें कि वो आपको छोड़ दे या दूसरों के सामने आपकी बुराई करें, और ये लोग फिर दिल जीतते हैं। आप दुश्मन को शर्मिंदा करके क्या लेंगे? शादियों में आप गोल टेबल भी शायद इसीलिए हो गए कि फेस टू फेस गिफ्तें करें, राउंड टेबल सेटअप, क्योंकि गीबत करना आसान होगा, फिर फेस एक्सप्रेशंस भी देखेंगे। मत साया करें अपने आप को, जिन जुबानों पे दुनिया लोग की बातें रहती हैं ना, अल्लाह की बातें नहीं आएंगी। अपने आप को ऐसा बना लें जैसे रुई का गोला, फुहार, ओस, शबनम, मोमिन में ये दो चीज़ें एक वक्त में होती हैं। दोस्तों में होगा तो ऐसे नरम जैसे वो गोला गंडा है मीठा, और जब काम पे है तो फौलाद, रस मोहक को बातिल, किया क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं वो किया। और ये आपस में ये दो सख्त और नरम चीज़ों को जोड़ना ये बड़ा मुश्किल है। ये ज़ुबान और दांतों की मिसाल ले लें, ज़ुबान नरम है तो दांत सख्त हैं, ये नरम ज़ुबान दांतों के बीच में कैसे रहती है, नरमी की वजह से रहती है। ये दो चीज़ें, वो एक पहले भी मिसाल देती हूँ, जैसे पिज़्ज़ा होता है, बाहर से क्रस्ट सख्त और हाथ से तोड़ो तो नरम, ये नहीं कि बाहर से नरम लगे और तोड़ो तो दांत ही टूट जाए। अंदर से मोमी नरम होता है, आप जितना उसके करीब आते हैं आप कहते हैं तुम्हारी जैसा है, तुम्हारी जैसा है, लेकिन बाहर से एक रोब होता है, लोग उसको बात नहीं कर सकते। और हमारा हाल इससे अपोजिट होता है, हम जितना जिसे करीब होते हैं उतनी उसकी बुराइयाँ ज़्यादा करते हैं। दूर वालों से तो हम बड़े मीठे, हाय बाय हेलो दैलो, और घर आते ही हमारा पारा चढ़ जाता है। तो हज़रत यूसुफ़ ने उनको बिल्कुल शर्मिंदा नहीं किया, कहा नहीं, तुम उस वक़्त थोड़े ऐसे ना समझते, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं। قالوا تالله لقد آثرك الله علينا, इस पर भाइयों ने जवाब दिया कि बखुदा अल्लाह ने तुम को हम पर फजीलत बख्शी है और वाकई हम खता करते। यूसुफ ने कहा हाँ हाँ जी बिल्कुल आप ही खता करते। नहीं, कहा नहीं, फिक्र ना करो, ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। قال لا تسريب عليكم اليوم, यूसुफ बोले आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। या नोट कीजिएगा, पहले खुद अपनी तरफ कह दिया कि ला तसरीब अलैकुम, मैं नहीं तुम्हें पकड़ूंगा। हदीस में भी आता है कि जब तक बंदों के हकूक बंदे माफ़ ना करें अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। यहाँ बिल्कुल उसकी बेहतरीन मिसाल है कि मैं नहीं पकड़ रहा तो अल्लाह भी नहीं पकड़ेगा, और दुआ भी कर रहा हूँ कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। वहु अरहमुर राहिमीन, वो सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। और इस हबूबी कमीस हाजा, जाओ मेरा ये कमीज़ ले जाओ और मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो, उनकी बेनाई पलट आएगी और वो अपने सब अहलो याल को भी साथ ले आओ। यूसुफ की कमीज़ गई तो बाप के लिए गई, तो लोग कहते हैं तो हमारे पीर साहब के बुरे, उनकी भी कमीज़ ले जाओ, चाहे बुआ रही हो उसमें से। तो देखिए इसी कमीज़ की वजह से बाप की बेनाई गई भी थी। इस पूरी सूरत में कमीज़ का बड़ा चक्कर है, कमीज़ पे खून लगा तो बाप दुखी हुए, फिर अजीज़ मिस्र की बीवी के मामले में कमीज़ का तस्कर आया, और यहाँ आ रहा है फिर, और आगे जाके आप देखेंगे। फलम्मा फसलतिल ईर, और जब काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो इनके बाप ने किनान में कहा, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, तुम कहीं ये ना कहने लग जाओ कि मैं तो बुढ़ापे में सठिया गया हूँ। यानी अभी कमीज़ वहाँ से चली और बाप को किनान में खुशबू आ रही, तो ये बताइए कि कमीज़ तो पहले भी मिस्र में थी, पहले खुशबू क्यों ना आई, जब अल्लाह ने चाहा दी। और कहा देखो तुम मुझे ऐसी बातें ना कहना कि मैं सठिया गया हूँ। कालू तल्लाहिन्नका लफी दलालिकल कदीम, घर के लोग बोले खुदा की कसम आप तो अपने उसी पुराने खप्त में पड़े हुए। ये बोलने वाले कौन थे, ये बेटों की बीवियाँ थीं। यहाँ से पता चलता है कि जो बेटे अपने घर वालों की इज्जत नहीं करते ना, बहुएं भी नहीं करती। ये जुमला तो आप अपने बेटों को ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन हॉल का असर होता है। यानी घर वाले फिर बोल रहे हैं कि अब्बा आप तो सठिया गए हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, यानी आपको अभी तक यूसुफ भूले ही नहीं और इस तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ पर रुक पूरा होता है, कितनी बातें हैं, ना चाहते हुए भी सूरह यूसुफ पे हमेशा वक्त ज़्यादा लगता है। अल्लाह ताला माफ़ करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।